नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं। हमें जानकर बेहद खुशी हो रही है कि इस बाइबल अध्ययन से आपको आध्यात्मिक लाभ मिल रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से एज्रा नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पूर्व मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
तू आशीष मुझको दे प्रभु, तू आशीष मुझको दे प्रभु, मुझको दे प्रभु, तू आशीष मुझको दे प्रभु। तेरा प्रकाश मुझ में हो प्रभु, तेरा ही तेज मुझ में हो प्रभु, प्रकाश मुझ में हो प्रभु, तेरा ही तेज मुझ में हो प्रभु।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे विश्वास है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रह करके कुशल पूर्वक हैं। मेरे मित्रों, मैं आप सबका प्रभु यीशु के नाम में इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, विशेष करके अपने उन नए मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन दिनों हम पुराने नियम की पुस्तकों में से एज्रा नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और आज के अध्ययन के लिए परमेश्वर से सहायता मांगें। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके जीवित और सामर्थ्य वचन के लिए, जिसके द्वारा से आप हमसे बोलते और बातचीत करते हैं। हम धन्यवादित हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें यह जीवन दिया है और ऐसा सुंदर अवसर दिया है ताकि हम सब एक साथ आपके जीवित वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम आपके वचन में से सुनते और सीखते हैं, मनन चिंतन करते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमें से प्रत्येक को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ की परिपूर्णता प्रदान करें। और विशेष करके हम प्रार्थना करते हैं अपने उन श्रोता मित्रों के लिए भी जो बीमार हैं, निराश हैं, दुखित हैं और चिंतित हैं, परेशान हैं। पिता परमेश्वर, उन पर भी अपनी अनुग्रह प्रदान करें और आज अपने जीवित वचन के द्वारा उनके हृदयों से बोले और बातचीत करें, ताकि हम में से प्रत्येक जन इस बात को समझ सके कि आप हमसे प्रेम करते हैं, आप हमें से प्रत्येक की चिंता करते हैं और आप चाहते हैं कि हम आपकी निकटता में आने पाएं। इस समय हम हरेक को आपके हाथ में सौंप देते हैं, इस अध्ययन पर आपकी आशीष चाहते हैं। आप हम सबकी सहायता करें और मदद करें। बड़े धन्यवाद के साथ प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आज हम एज्रा की पुस्तक उसके 9 अध्याय से अपने अध्ययन को आरंभ करेंगे। आज का विषय है एज्रा का समाज सुधार। ध्यान दीजिए, अध्याय 9 में हम बाइबल में व्यक्त महान प्रार्थनाओं में से एक को देखते हैं। बंधुआई के बाद की ऐतिहासिक पुस्तकों में 3 अध्याय ऐसे हैं जिनमें प्रार्थनाएं पाई जाती हैं। ये तीनों अध्यायों का क्रमांक 9 है। एज्रा अध्याय 9, नहेमिया अध्याय 9, दानियल अध्याय 9। यहाँ एज्रा की महान प्रार्थना है। इस प्रार्थना का कारण बड़ा दुखद था, अन्य जातियों से मेल। तो आइए अब हम देखेंगे एज्रा की पुस्तक अध्याय 9 उसके एक पद में लिखा हुआ है। एज्रा 9 उसके एक पद में, जब ये काम हो चुके तब हाकिम मेरे पास आकर कहने लगे, न तो इसराइली लोग, न याजक, न लेविये इस ओर के देशों के लोगों से अलग हुए, वरन उनके से अर्थात कनानियों, हित्तियों, परिज्जियों, यबूसियों, अमोनियों, मुआबियों, मिस्रियों और एमोरियों के से घिनोने काम करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ मिस्रियों का नाम आया है और अन्य जातियों का भी। हित्ती अत्यधिक विकासशील जाति थे। मुझे हित्तियों के बारे में पढ़ने में बहुत रुचि थी। संपूर्ण एशिया माइनर, विशेष करके तटीय प्रदेशों में उनके द्वारा स्थापित नगर थे, जैसे इफिसुस, स्मरना, ट्रॉय आदि। वे विकसित लोग थे, परंतु थे वे अन्य जाति के। इसराइली इनसे अलग नहीं रह रहे थे। ध्यान दें, स्वदेश लौटने वाला पहला दल निराशा से भरा हुआ था। हगै की पुस्तक में हम इसके बारे में और अधिक पढ़ेंगे कि उसने निराशजनक बाधाओं पर जय पाने में इन इसराइलियों की क्या सहायता की। मेरा विश्वास करें कि वे बहुत अधिक निराश थे, परंतु हगै के सहयोग से वे निराशा से उभर पाए थे। वह एक कर्मठ मनुष्य था और अंततः मंदिर और यरूशलेम के शहरपनाह का पुनः निर्माण संपन्न हुआ। इसमें संदेह नहीं कि कदम कदम पर निराशाओं का साया था। ऐसे ही समयों में विश्वासी हिम्मत हार जाते हैं। अनेक विश्वासियों के साथ ऐसा भी हुआ है। जी हाँ, किसी ने खूब कहा है कि निराशा शैतान का अस्त्र है। यहूदियों ने अपना प्रतिरोध त्याग कर पड़ोसी अन्य जातियों, परमेश्वर और इसराइल के बैरियों से विवाह कर लिया था, जिसके कारण उनमें अन्य जातियों के घृणित काम अभ्यास बन गए थे। उनसे दूर न रहने के कारण वे अनैतिकता और मूर्ति पूजा में मग्न हो गए थे। मेरे विचार में वे संभवतः विवाहित भी नहीं थे, क्योंकि आज के अविश्वासी समुदाय के समान वे भी विवाह की औपचारिकता की अधिक चिंता नहीं करते थे। कहा जाता है कि हम प्रगति के युग में हैं, हमें नई स्वतंत्रता प्राप्त है, हम सभ्य लोग हैं। मेरे मित्रों, सच तो यह है कि हम एज्रा के युग के लोगों से भिन्न नहीं हैं। आइए हम आगे पढ़ें। एज्रा 9 अध्याय उसके 2 पद में लिखा है, क्योंकि उन्होंने उनकी बेटियों में से अपने और अपने बेटों के लिए स्त्रियां कर ली हैं, और पवित्र वंश इस ओर के देशों के लोगों में मिल गया है। वरन हाकिम और सरदार इस विश्वासघात में मुख्य हुए हैं। ध्यान दे, अगुए भी इस अनाचार के सहभागी थे। वे और अधिक दोषी भी थे, क्योंकि सौभाग्य उत्तरदायित्व बढ़ाता है। लौटकर आने वाले ये इसराइली घृणित, गंदी और दयनीय दशा में थे। ऐसी स्थिति में एज्रा बहुत कुछ कर सकता था। वह एक देशभक्ति का कार्यक्रम चला सकता था, इसराइल का झंडा गाड़ सकता था, दाऊद का सितारा लगा सकता था और देशभक्ति के जुलूस निकाल सकता था, परंतु उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वह अंतर जातीय विवाह, अनैतिकता और मूर्ति पूजा के विरुद्ध भाषण झाड़ सकता था, उसने यह भी नहीं किया। वह यह भी कर सकता था कि एक समाज सुधारक संस्था बनाकर अनैतिकता में पड़े दंपतियों को सुधार सकता था। मेरे मित्रों, आज हम ऐसा ही करते हैं, परंतु एज्रा को हमारी आधुनिक विधियों का ज्ञान नहीं था। मैं चाहता हूं कि आप ध्यान दें कि उसने क्या किया, क्योंकि आज हमें यह देखने को नहीं मिलता है। एज्रा 9 अध्याय उसके 3 पद में लिखा हुआ है, यह बात सुनकर मैंने अपने वस्त्र और बागे को फाड़ा और अपने सिर और दाढ़ी के बाल नोचे और विस्मित होकर बैठा रहा। स्मरण रखें कि एज्रा पहले दल के स्वदेश आगमन के 75 वर्ष बाद तक नहीं आया था। वे जरुबाबेल के साथ आए थे, और जब एज्रा वहां पहुंचा तब मंदिर का पुनः निर्माण हो चुका था, परंतु यरूशलेम के शहर पनाह अब भी टूटी पड़ी थी और प्रजा घृणित दशा में थी। वे अन्य जातियों के साथ घुल मिल गए थे, वरन उनके साथ विवाहित जीवन भी बिता रहे थे, जिसे परमेश्वर ने उन्हें मना किया था। अनैतिकता और मूर्ति पूजा का बोलबाला था। यहूदी अपने आप को अलग नहीं रख पाए थे और दुर्दशाग्रस्त थे। जब एज्रा के समक्ष यह बात आई और उसने स्वयं देखा कि यह सच है, तो वह विस्मित हो गया कि परमेश्वर की प्रजा ऐसा कर सकती है। मेरे प्रियो, आज हम कलीसिया के धर्म त्याग की चर्चा करते हैं। कम से कम मैं तो करता हूँ, परंतु मैं सोचता हूँ कि क्या हम अपने उत्तरदायित्व को निभा रहे हैं। जब से मैं सेवा में आया हूँ, मेरा दृष्टिकोण बदल गया है। मैं कहता हूँ कि मैं तो अपने हाथ धो लेना चाहता हूँ, यह मेरा काम नहीं है। परंतु नहीं, यह मेरा काम है। मेरे मित्रों, आपके और मेरे लिए उंगली उठाना बहुत आसान होता है, परंतु देखिए एज्रा ने क्या किया। वह उनके पाप से ऐसा विस्मित हुआ कि उसने अपने कपड़े फाड़े और बाल नोचे, जैसा आज सामान्यतः किया जाता है। उनके लिए आलोचनात्मक भाषण देने की अपेक्षा देखिए उसका अगला कदम क्या था। आइए पढ़ें एज्रा 9:4 में लिखा हुआ है, तब जितने लोग इसराइल के परमेश्वर के वचन सुनकर बंधुआई से आए हुए लोगों के विश्वासघात के कारण थरथराते थे, सब मेरे पास इकट्ठे हुए और मैं सांझ की भेंट के समय तक विस्मित होकर बैठा रहा। ध्यान दीजिए, तब जितने लोग इसराइल के परमेश्वर के वचन सुनकर थरथराते थे, यह मुझे अति मन भावन है। अब हम कुछ पल रुकें। कितने लोग परमेश्वर के वचन को गंभीरता से लेते हैं? मेरे विचार में मैं रूढ़िवादी कलीसिया को भली भांति समझता हूँ। मैं अनेक अच्छे रूढ़िवादियों को जानता हूँ। वे चयनित जन हैं, वे मेरे दल के हैं और मैं उनसे प्रेम करता हूँ। परंतु अनेक जन हैं जो परमेश्वर के वचन से लगाव रखने का दावा करते हैं। उनके पास टिप्पणियां लिखी हुई हैं, बाइबल के वचन चिन्हित हैं, अर्थात बाइबल के पद चिन्ह किए हुए हैं। इनके बारे में रोचक बात तो यह है कि उनके जीवन कलंकित हैं, अशुद्ध हैं। वे अपने जीवन के लिए कुछ नहीं करते हैं। उनका दावा है कि वे परमेश्वर के वचन में विश्वास रखते हैं, परंतु उनके जीवन में वचन का प्रभाव नहीं है। वे बाइबल पर कांपते नहीं है। वे सांसारिक मनुष्यों की नाई कहते हैं परमेश्वर प्रेम है। निश्चय ही वह है भी। यह जानना एक अद्भुत बात है कि वह प्रेम है, परंतु इससे भी बढ़कर है कि हमारा परमेश्वर एक पवित्र परमेश्वर है। वह पाप का दंड देता है। यही बात एज्रा के लिए चिंता का विषय था। मेरे प्रिय मित्र, क्या आज आप भी ऐसे ही लोगों में से हैं जो कहते हैं कि परमेश्वर प्रेम है, लेकिन इसके आगे कुछ भी नहीं करते? जैसा वह जीवन जीना चाहते हैं वैसा ही जीते हैं। एज्रा संध्याकालीन बलि के समय तक विस्मित बैठा रहा। एज्रा के विस्मित होने का कारण इसराइलियों का अपराध था। क्या यह हमारे लिए चिंता का कारण है? हम आज वास्तव में कितना वचन में हैं? कितना हम वचन के अनुसार जीवन जीते हैं? हम परमेश्वर के वचन में कितना विश्वास करते हैं? मेरे प्रियो, आपके और मेरे लिए यह अच्छा होगा कि हम किसी एकांत स्थान में जाकर स्वयं से एक प्रश्न पूछें, क्या मैं वास्तव में परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता हूँ? क्या मैं उसका पालन करता हूँ? क्या मैं उसके अनुसार चलता हूँ? प्रभु यीशु ने कहा यूहन्ना रचित सुसमाचार 14:15 में, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यह वचन सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या हम इसके अनुसार अपने जीवन को ढालते हैं? एज्रा की पुस्तक 9:5 में आगे लिखा हुआ है, परंतु सांझ की भेंट के समय मैं वस्त्र और बागा फाड़े हुए उपवास की दशा में उठा, फिर घुटनों के बल झुका और अपने हाथ अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फैलाकर कहा। अपने हाथ यहोवा की ओर फैलाने का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि आप परमेश्वर से कुछ नहीं छिपा रहे हैं। इसका अर्थ यह है मेरे मित्रों कि जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तब आपका मन और आत्मा उसके समक्ष अनावृत होता है, खुला हुआ होता है। एज्रा परमेश्वर के समक्ष हाथ उठाए हुए था, अर्थात वह परमेश्वर से कुछ नहीं छिपा रहा था। पौलुस ने यही बात तीमुथियुस को इन शब्दों में लिखी, 1 तीमुथियुस 2:8 पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना करे। जी हाँ, हमें अपने प्रार्थना के जीवन में यह सदा स्मरण रखना है कि हम परमेश्वर के सम्मुख जब आए तो खुले मन से आए। हम आगे देखते हैं एज्रा की प्रार्थना, एज्रा की पुस्तक 9:6 में पढ़ते हैं, हे मेरे परमेश्वर, मुझे तेरी ओर अपना मुंह उठाते लाज आती है, और हे मेरे परमेश्वर, मेरा मुंह काला है, क्योंकि हम लोगों के अधर्म के काम हमारे सिर पर बढ़ गए हैं, और हमारा दोष बढ़ते बढ़ते आकाश तक पहुंचा है। ध्यान दीजिए, वह क्या कहता है। उसने यह नहीं कहा कि उनके पाप सिर से ऊपर हो गए हैं और उनके पाप स्वर्ग तक पहुंच गए हैं। उसने कहा, क्योंकि हम लोगों के अधर्म के काम हमारे सिर पर बढ़ गए हैं और हमारा दोष बढ़ते बढ़ते आकाश तक पहुंच गया है। हम कई बार प्रार्थना करते हैं तो हम कहते हैं कि फलाने के और उस भाई के, उस बहन के पाप बढ़ गए हैं, आप उसे क्षमा करें। हमारे प्रार्थना के तरीके अलग होते हैं, लेकिन यहाँ पर एज्रा कहता है कि हम लोगों के अधर्म के काम हमारे सिर पर बढ़ गए हैं। मेरे प्रियो, आज कलीसिया का त्याग करना आसान है, कलीसिया की दशा बहुत ही दयनीय है, परंतु यह उनका पाप नहीं है, यह हमारा पाप है, मेरा और आपका पाप है। यदि कलीसिया परमेश्वर से दूर है तो हम परमेश्वर से दूर हैं। मेरा भाई नहीं, मेरी बहन नहीं, मैं हूं और आप हैं। आज मुझे और आपको प्रार्थना की आवश्यकता है, कलीसिया को प्रार्थना की आवश्यकता है। एज्रा 9:7 में हम पढ़ते हैं, अपने पुरखाओं के दिनों से लेकर आज के दिन तक हम बड़े दोषी हैं और अपने अधर्म के कामों के कारण हम अपने राजाओं और याजकों समेत देश देश के राजाओं के हाथ में किए गए कि तलवार, दासत्व, लूटे जाने और मुंह काला हो जाने की विपत्तियों में पड़े, जैसे कि आज हमारी दशा है। एज्रा की प्रार्थना पर ध्यान दें, एक महान प्रार्थना। वह जानता था कि परदेश में बंदी होकर रहना क्या है। वह या तो बंधुआई में जन्मा था या बालक था जब वे बंधुआई में ले जाए गए थे, अतः वह जानता था कि बंधुआई क्या है, गुलामी क्या है। यही कारण था कि वह परमेश्वर के दंड के बारे में सोचकर कांप रहा था। मेरे मित्रों, आज अनेक मनुष्य परमेश्वर से दंड पा रहे हैं। मैं अनेक उदाहरण दे रहा हूं। वर्षों पूर्व एक पुरुष मेरे पास आया, उसे रति रोग था। उसने कहा, मैं सोच रहा था कि मैं बच जाऊंगा, परंतु अब मुझे इस घृणित रोग से मरना होगा। अब कोई कहेगा, परमेश्वर उस पर दया कर सकता था। जी हाँ, परमेश्वर उस पर अवश्य दया करता, परंतु वह दोषी था। हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है और वह पाप को दंड देता है। यह बहुत बुरी बात है कि हम में से अधिकांश जन परमेश्वर के वचन पर कांपते नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप परमेश्वर के वचन को पढ़कर, सुनकर, जानकर कांपते हैं? क्या आपको उसे डर लगता है? मेरे प्रियो, ध्यान रखें कि परमेश्वर दयालु है, अनुग्रहकारी है, पवित्र है, और इसके साथ साथ वह पाप का दंड भी देता है। एज्रा 9:8 में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, पर अब थोड़े दिन से हमारे परमेश्वर यहोवा का अनुग्रह हम पर हुआ है कि हम में से कोई कोई बच निकले और हमको उसके पवित्र स्थान एक खूंटी मिले, और हमारा परमेश्वर हमारी आंखों में ज्योति आने दे और दासत्व में हमको कुछ विश्रांति मिले। मित्रों, यह एक महान पद है। एज्रा कहता है, अब थोड़े दिन से हमारे परमेश्वर यहोवा का अनुग्रह हम पर हुआ है। बंधुआई के 70 पूरे हो गए थे। परमेश्वर ने अपनी प्रजा को स्वदेश लौट आने की अनुमति दी, परंतु वे फिर अन्य जातियों के साथ वही काम करने लगे जिसके कारण परमेश्वर ने उन्हें गुलामी में अर्थात बंधुआ बनाकर भेज दिया था। एज्रा कहता है, हम में से कोई कोई बच निकले। इन कुछ इसराइलियों ने स्वदेश लौटने में परमेश्वर की आज्ञा मानी थी। अधिकांश यहूदी वहीं रुक गए थे। हमको उसके पवित्र स्थान में एक खूंटी मिले। क्या आप जानते हैं कि यह खूंटी क्या है? वह खूंटी मसीह है। मेरा लंगर पर्दे के भीतर है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वहां जड़ दिया गया हूं। मसीह को यहाँ क्रूस पर कीलों से ठोका गया था कि मैं ऊपर परमेश्वर के सिंहासन में जड़ दिया जाऊं सदा काल के लिए। यशाया के पुस्तक 22 अध्याय उसके 22 और 23 पद में लिखा है, मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे पर रखूंगा और वह खोलेगा और कोई बंद न कर सकेगा, वह बंद करेगा और कोई खोल न सकेगा। मैं उसको दृढ़ स्थान में खूंटी के समान गाड़ूंगा और वह अपने पिता के घराने के लिए वैभव का कारण होगा। जी हाँ, विश्वासी वहां खूंटी के समान गाड़े जाते हैं, क्रूस पर नहीं, स्वर्गीय अनंत काल में। खूंटी एक निश्चित स्थान में गाड़ी जाती है। यह कैसा अद्भुत उदाहरण है। यहूदियों ने अपना उद्धार खोया नहीं था, परंतु उन्होंने परमेश्वर की आशीषें और प्रतिफल और बहुत कुछ खो दिया था। आज हम में से अधिकांश को उद्धार प्राप्त है, परंतु हमें प्रतिफल नहीं मिलेगा। वह हमारी आंखों में ज्योति आने दे और दासत्व में हमको कुछ विश्रांति मिले। मेरे विचार में यह नवजागृति का सच्चा परिदृश्य है। नवजागृति वास्तव में बाइबल का शब्द नहीं है। मैंने इस शब्द का उपयोग प्रचार मंच में सामान्य रूप से किया है, जिसका अर्थ है आत्मिक उत्थान, जिसमें पापी सामूहिक रूप से मन परिवर्तन करते हैं और आत्मिक बातों में नई रुचि उत्पन्न होती है। जी हाँ, नवजागृति का वास्तविक अर्थ है पुनः जीवन पाना या शक्ति पाना या चेतना में लौट आना। इसका संदर्भ जीवन से है जो मृत्यु तक पहुंच गया, उसमें जान नहीं रही और तब फिर से जीवन पा गया। रोमियो की पत्री 14 अध्याय उसके 9 पद में पौलुस प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बारे में इन शब्दों को काम में लेता है, मसीह मरा और जी उठा। अतः स्पष्ट है कि नवजागृति शब्द विश्वासियों के संदर्भ में सीमित होना चाहिए। इसका अर्थ है कि विश्वासियों की आत्मिक दशा बहुत गिर गई है, परंतु वह जीवन और सामर्थ्य में लौटाया गया है। अतः यहाँ इज़रा के युग में वास्तविक नवजागृति आती है। जी हाँ, आइए देखें, इज़रा की प्रार्थना अभी समाप्त नहीं हुई है। इज़रा की पुस्तक 9 अध्याय उसके 9 पद में लिखा हुआ है, हम दास तो हैं ही, परंतु हमारे दासत्व में हमारे परमेश्वर ने हमको नहीं छोड़ दिया, वरन फारस के राजाओं को हम पर ऐसे कृपालु किया कि हम नया जीवन पाकर अपने परमेश्वर के भवन को उठाने और इसके खंडहरों को सुधारने पाए और हमें यहूदा और यरूशलेम में आड़ मिली। परमेश्वर उन पर कैसा अनुग्रहकारी था। उन्होंने अपने पाप स्वीकार किए और परमेश्वर उन्हें आशीष देगा। जी हाँ, जब हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं अर्थात मान लेते हैं उसके समक्ष में, तब वह मुझे और आपको भी अपनी आशीष प्रदान करता है। इज़रा 9 अध्याय उसके 10 से 13 पद में आगे हम पढ़ते हैं, अब हे हमारे परमेश्वर, इसके बाद हम क्या कहें, यही कि हमने तेरी उन आज्ञाओं को तोड़ दिया है जो तूने यह कहकर अपने दास नबियों के द्वारा दी, जिस देश के अधिकारी होने को तुम जाने पर हो, वह तो देश देश के लोगों की अशुद्धता के कारण और उनके घिनौने कामों के कारण अशुद्ध देश है। उन्होंने उसे एक सीमा से दूसरी सीमा तक अपनी अशुद्धता से भर दिया है। इसलिए अब तू न तो अपनी बेटियां उनके बेटों को ब्याह देना और न उनकी बेटियों से अपने बेटों का विवाह करना और न कभी उनका कुशल क्षेम चाहना, इसलिए कि तुम बलवान बनो और उस देश के अच्छे अच्छे पदार्थ खाने पाओ और उसे ऐसा छोड़ जाओ कि वह तुम्हारे वंश के अधिकार में सदैव बना रहे। उस सब के बाद जो हमारे बुरे कामों और बड़े दोष के कारण हम पर बीता है, जबकि हे हमारे परमेश्वर, तूने हमारे अधर्म के बराबर हमें दंड नहीं दिया, वरन हम में से कितनों को बचा रखा है। ध्यान दीजिए, दूसरे शब्दों में इज़रा ने कहा, हमें जो दंड मिला वह हमारे पापों की तुलना में कम था, हमें और अधिक दंड मिलना चाहिए था। हम पढ़ते हैं इज़रा 9 अध्याय उसके 14 और 15 पद में, तो क्या हम तेरी आज्ञाओं को फिर से उल्लंघन करके इन घिनौने काम करने वाले लोगों से समध्याना का संबंध करें? क्या तू हम पर यहाँ तक कोप न करेगा जिससे हम मिट जाएं और न तो कोई बचे और न कोई रह जाए? हे इसराइल के परमेश्वर यहोवा, तू धर्मी है, हम बचकर मुक्त हुए हैं जैसे कि आज वर्तमान में है। देख, हम तेरे सामने दोषी हैं, इस कारण कोई तेरे सामने खड़ा नहीं रह सकता। मेरे मित्रों, यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर की दया, पापों का अंगीकार, मसीह का बलिदान और परमेश्वर का अनुग्रह ही उसे सक्षम बनाता है कि उन्हें बचाए, उन्हें पुनः स्थापित करे और नव जीवन प्रदान करे। परमेश्वर एज्रा की प्रार्थना के उत्तर में उनके लिए यह सब कुछ करेगा। ये कुछ लोग जो स्वदेश लौटे परमेश्वर की दया की दुहाई देंगे। मेरे प्रिय मित्रों, हम जब ऐसा करेंगे तब परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा, हमें आशीषित करेगा। मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि एज्रा ने परमेश्वर के सम्मुख अपने लोगों के पापों को अंगीकार किया और परमेश्वर ने उसके प्रति उन्हें और उसके लोगों को आशीषें दी। आज जब हम भी अपने पापों को मान लेते हैं, परमेश्वर के समक्ष स्वीकार कर लेते हैं, तो निश्चय ही वह आपको और मुझे भी आशीष देगा, क्योंकि वह वही परमेश्वर है जो कभी बदलता नहीं। मेरे मित्रों, आज वह चाहता है कि आप भी उसे अपने जीवन में पुकारें और उसके महान आशीषों को प्राप्त करें और अपने पापों से छुटकारा पाएं। मेरे प्रियो, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे विश्वास है कि आपने एज्रा के जीवन के द्वारा अवश्य ही अपने जीवन में आत्मिक बातों को सीखा है और आशीषों को प्राप्त किया है। प्रभु आप सबकी सहायता करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
तू है मसीह प्यार का, तेरा प्यार मुझ में हो, सत्य तू प्रभु, तेरी सच्चाई मुझ में हो। तू है मसीह प्यार का, तेरा प्यार मुझ में हो, सत्य तू प्रभु, तेरी सच्चाई मुझ में हो। यीशु तेरी रूह से मुझे भर दे प्रभु, मुझे भर दे प्रभु।